दौला पुस्तक 12वी लेक्चर नंबर 20। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सौवसाऊणं कम्मठजनियवेण उवहि समुत्तिन्नये जिनेनमिवं वेयन महाहियारं विविहियारं परुवेमु। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो चौथा खंड है उसका नाम है वेदना, और ये वेदना नहीं, वो कर्म प्रकृति को यहाँ वेदना कहते हैं, कर्म को वेदना कहते हैं। और यहाँ वेदना भाव विधान हमारा हमने पढ़ा, उसकी चूली का देख रहे हैं। भाव का अर्थ है वेदना का भाव, कर्म का भाव यानी उसका अनुभाग। उसकी बहुत विस्तार से अपनी चर्चा चल रही है। हम वैसे तो 121 पेज तक पढ़ते गए थे, मैं 18वीं फिर आते हैं क्योंकि हमने वो पहले दिन तो अर्थ नहीं लगा, कल से अर्थ लगा है, दोबारा उसको पढ़ेंगे, अभी क्लैरिटी हो जाएगी। पहले हमने क्या देखा था, जघन्य स्थान हमने विस्तार से देखा, ज्ञानावरण का जघन्य स्थान है, और ये बंध स्थानों की बात चल रही, सत्व स्थानों की नहीं। सत्व स्थानों में सबसे जघन्य स्थान जुदा होगा, वो इसको नहीं होगा, अभी हम बंध स्थानों की ही चर्चा कर रहे हैं। तो बंध स्थान में सबसे जघन्य स्थान हमने सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में देखा था। तो जघन्य स्थान कोई भी बंध स्थान हो या कोई भी अनुभाग का स्थान हो, सत्व का हो या बंध का हो, स्थान किसको कहेंगे? तो अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा का जो एक परमाणु है वर्ग, उसके जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसी को स्थान कहेंगे, उसका जो प्रमाण है उसका नाम है स्थान। स्पर्धक किसको कहेंगे? किसी एक स्पर्धक जहाँ कहते हैं, तो स्पर्धक एक स्पर्धक का जो अंतिम वर्गणा के एक वर्ग में जो अनुभाग है उसको स्पर्धक संज्ञा है। वर्गणा संज्ञा किसको है, यह अनुभाग के प्रकरण में यह ख्याल में रखना। वर्गणा किसको कहेंगे? वर्गणा के एक एक परमाणु में जो अनुभाग है उसको वर्गणा नाम देते हैं। वर्ग तो उसको कहेंगे ही कहेंगे, अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। और अविभाग प्रतिच्छेद किसको कहेंगे? सबसे जो सूक्ष्म छोटे में छोटा अंश है, एक वर्गणा से दूसरे वर्गणा में जितनी वृद्धि रूप अंश होता है उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। यह हमने किसको क्या कहना उसकी बात देखी। जघन्य स्थान में क्या है, जितने नंबर ऑफ स्पर्धक है, अभी उसमें और भी कुछ नाम आते हैं। एक तो वर्गणा का अंतर और एक स्पर्धक का अंतर। स्पर्धक का अंतर किसको कहना, स्पर्धक किसको कहेंगे? हर एक के अंतिम वर्गणा, मान लेते हमने 100 से लेकर 103 तक वर्गणा है, फिर 200 से लेकर 203 तक है, तो 103 और 203 में कितना अंतर है उसको स्पर्धक का अंतर कहेंगे।
203 है ना, स्पर्धक का अंतर
नहीं, स्पर्धक का अंतर जो है वो 103 और 203 में जो है वो है।
अच्छा, लास्ट
और वर्गणाओं में अंतर है वो 103 और 200 के बीच में जो अंतर है वो वर्गणा अंतर होगा। ख्याल में ही इतनी बात, ये क्लैरिटी हो जाए तो अभी जो हम पढ़ेंगे उसकी बात है। दूसरी बात, ये तो जघन्य स्थान में तो बताया कि जितने नंबर ऑफ स्पर्धक हो गए वो सब अंतर, स्पर्धक अंतर तो समान है उसमें, अवस्थित जिसको कहेंगे, क्योंकि एक ही स्थान है, उसमें कोई बीच में वृद्धि वगैरह का सवाल ही नहीं था। अब उसका दूसरा कोई भी स्थान है, हम जो कहते उससे बढ़कर दूसरा कौन सा स्थान हो सकता है, तो सूक्ष्म सांप्राय के द्वितीय समय, द्विचरम समय में उल्टे क्रम से हम देख रहे हैं, यानी पूर्व समय में बंध अनंत गुणा था, अभी अंतिम समय में बंध अनंत गुणा हीन हुआ है, उसको हमने जघन्य स्थान कहा। अब ये जो अनंत गुणा वाला जो स्थान है तो उसमें अनुभाग कितना बढ़ा, बढ़ा इन्हें है वो बढ़ा ऐसा नहीं है, पहले उस स्थान में वो बढ़ा हुआ था, नेक्स्ट समय में अनंत गुणा हीन हुआ, परंतु हम जघन्य की तरफ से वर्णन कर रहे हैं तो हम कहेंगे वहाँ अनुभाग कितना ज्यादा है बंद की बात है, तो इसे अनंत गुणा ज्यादा है, यानी जो अनुभाग में जो वृद्धि का प्रमाण है, और वहां स्पर्धक कितने बने हैं, तो अनंत अनंत बने। जो जघन्य स्थान में स्पर्धक थे उससे भी अनंत गुणे स्पर्धक भी बढ़े हैं। तो अभी हमको स्पर्धक का प्रमाण निकालना है, यानी ये जो बढ़े हुए स्पर्धक है उसको कहेंगे वृद्धि स्पर्धक, या स्पर्धक वृद्धि तो नहीं नाम है उसके, यानी वो उसको कहेंगे दूसरा नाम है प्रक्षेप स्पर्धक। जघन्य स्थान के कंपेरिजन में यहाँ जो एक एक स्पर्धक का प्रमाण बताएंगे, प्रतिस्पर्धक उतनी उतनी वृद्धि होने वाली है। तो कहते कि हमने जितना अनुभाग टोटल बढ़ा है उसको नंबर ऑफ स्पर्धक जितने नए बनेंगे उसकी बात है। जो एक समय प्रबद्ध बनता है उसमें जो जघन्य स्थान जैसे तो स्पर्धक है ही है, क्योंकि उसके ऊपर भी इतने होते हैं, यानी वो तो उसका स्पर्धक का अंतर अवस्थित नहीं होगा। जघन्य स्थान तक तो जघन्य स्थान जैसे है, और उसके ऊपर जो है वृद्धि प्रक्षेप जिसको कहेंगे, वहां का स्पर्धक का प्रमाण और अंतर का प्रमाण भी जुदा होगा। अभी वो स्पर्धक का प्रमाण कैसे निकालना है वहां पर, तो उसके लिए कहेंगे वृद्धि का प्रमाण, यानी वृद्धि स्पर्धक कहो या स्पर्धक वृद्धि कहो, प्रतिस्पर्धक कितनी वृद्धि होगी, या जघन्य स्थान से पहले स्पर्धक में कितनी वृद्धि होगी उसका प्रमाण निकालना है। तो कैसे कहेंगे हम, टोटल अनुभाग की वृद्धि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पर्धक, तो जो मिलेगा हमें वो प्रतिस्पर्धक वृद्धि मिलेगी, इसको स्पर्धक वृद्धि कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई?
अच्छा, एक क्लैरिटी है चाहिए। 103 से 200 का अंतर सभी कोई भी अनुभाग बढ़ेगा तो वो तो समान ही रहेगा?
नहीं, वर्गणा का जो अंतर जो है
वो भी बढ़ेगा,
उसमें अपना अपना अलग अलग है। अभी अनंत भाग की वृद्धि हो रही है कि कौन सी हो रही है वो बात हम बाद में करेंगे। कितनी वृद्धि कहाँ होती है, स्पर्धक में तो वृद्धि होती है, स्पर्धक अंतर में भी वृद्धि होती है, है ना? और स्पर्धकांतर जो है उसका प्रमाण निकालेंगे, वर्गणांतर और स्पर्धकांतर की कैसा क्या प्रपोर्शन होता है। तो यहां तक समझ में आई बात कि इसको कहेंगे स्पर्धक वृद्धि या प्रतिस्पर्धक वृद्धि कितनी होगी, वो वृद्धि का प्रमाण ओरिजिनल जघन्य स्थान में मिला देंगे तो हमें पहले स्पर्धक का प्रमाण आएगा। वो पहले स्पर्धक का जो प्रमाण आया उसमें अगर वो स्पर्धक वृद्धि और एक ऐड करो तो दूसरे स्पर्धक का प्रमाण आया, फिर तीसरे स्पर्धक का, इसे अंतिम स्पर्धक तक ले जाना। यहाँ तक बात ख्याल में? इसको यानी स्पर्धक वृद्धि यानी प्रतिस्पर्धक वृद्धि का प्रमाण हमको मिला।
जहाँ पे अनुभव की अनुवृद्धि अनंत गुणा होती है वहाँ पे स्पर्धकों का भी प्रमाण अनंत गुणा बढ़ेगा?
बिल्कुल बढ़ेगा। उन्हें इनका ये कहना, जहाँ अनंत गुण वृद्धि होती है तो वहाँ उस पूर्व स्थान से जो नए स्पर्धक बने क्या वो भी अनंत गुणे हो गए? तो हो गए। अभी हम ये पूरा पढ़ने वाले नहीं, ये सब बातें फिर से दोबारा आने वाली है। जहाँ अनंत भाग वृद्धि होती है वहाँ क्या होता है, जहाँ असंख्यात भाग वृद्धि क्या होता है, वो सब हम पूरा ही दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। अभी तो हमारे दूसरा स्थान है, जघन्य से दूसरा स्थान सूक्ष्म सांप्राय के द्विचरम समय में, वहाँ अनंत गुणा वृद्धि है। हम केवल अनंत गुणा वृद्धि की ही बात यहाँ सोचेंगे, बाकी वृद्धि और उसमें क्या होता है उसका तो क्रम से आने वाला ही है प्रकरण। तभी हमने ये देखा वृद्धि स्पर्धक यानी प्रतिस्पर्धक वृद्धि का प्रमाण हमें कैसे मिलेगा, टोटल अनुभाग की वृद्धि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रक्षेप स्पर्धक या वृद्धि स्पर्धक। अभी हमें वृद्धि स्पर्धक यानी प्रतिस्पर्धक वृद्धि का प्रमाण मिला, उसको स्पर्धक वृद्धि को या वृद्धि स्पर्धक को। अभी स्पर्धकों का अंतर कैसा निकालेंगे हम, तो वृद्धि स्पर्धक माइनस एक, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हम हमेशा कहते हैं 103 और 203 में कितना अंतर है, 203 माइनस 1, ये उसका अंतर है। यानी वृद्धि स्पर्धक या स्पर्धक वृद्धि जिसको हम कहेंगे माइनस वन, ये स्पर्धक का अंतर कहलाएगा। यहां तक बात ख्याल में? अब इसको वर्गणा का अंतर कितना है, वर्गणा का अंतर का अर्थ होता है नीचे के स्पर्धक की अंतिम वर्गणा और ऊपर की स्पर्धक की प्रथम वर्गणा, इसमें कितना डिफरेंस है, और वो डिफरेंस हम वो अनुभाग में ही नाप रहे, एक परमाणु की अपेक्षा देख रहे हो, तो उसको कैसे निकालना, तो उसको ऐसा निकालना कि वृद्धि स्पर्धक यानी स्पर्धक में जो वृद्धि हो रही है ना, कुछ नहीं पढ़ रहे मैं मुंह से, हमने स्पर्धक का अंतर देखा या वृद्धि स्पर्धक देखा था, वृद्धि स्पर्धक कहने मान लेते ना, कितनी प्रतिस्पर्धक वृद्धि कितनी होती है उसको देखा था। उसमें से एक माइनस किया तो स्पर्धक का अंतर आया था, और वृद्धि स्पर्धक या स्पर्धक वृद्धि में से उस स्पर्धक में नंबर ऑफ वर्गना जितनी उसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, वर्गना का अंतर मिलेगा। ख्याल में आई बात? वृद्धि स्पर्धक हम मान लेते 100 है, और उसमें वर्गना जो हम 100, 101, 102, 103, 104 है उसको माइनस करेंगे तो बीच वाला जो है
वो
वर्गना का अंतर मिलेगा, यानी बिटवीन 103 to 200। समझ में आई बात यहाँ तक? अब आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये अपनी भाषा में जरा समझने की कोशिश की। अभी देखो फिर से 118 पेज नया पैराग्राफ। जघन्य स्थान तो हमने देखा था, जघन्य में स्थान में तो सभी तो उसके सभी स्पर्धक एक समान है, उसका स्पर्धकांतर भी अवस्थित है, वही का वैसा है। अब जब दूसरा स्थान देखेंगे तो दूसरे स्थान में क्या है, नीचे जघन्य स्थान जहाँ जहाँ तक था वहां तक की रचना तो वैसे ही है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो स्पर्धक बने हैं वो अलग अंतर से, उसका वृद्धि का स्पर्धक का प्रमाण जुदा है। पहले प्रतिस्पर्धक जो वृद्धि का प्रमाण था जो जुदा था नहीं, अन्य वो जघन्य स्थान के योग्य था, अभी उसी के ऊपर और स्पर्धक बने, वो कैसे बने उसकी यहाँ चर्चा करेंगे। तो कहते इस जघन्य स्थान को, जघन्य स्थान का अर्थ वहां का अंतिम जो अनुभाग है उसको, सब जीवों से अनंत गुणे गुणकार के द्वारा गुणित करने पर, अभी हमको अनंत गुणा करना है, भाग नहीं देना है, इसलिए उसको गुणा करना। सूक्ष्म सांप्रदायिक के द्विचरम समय में बांधे गए द्वितीय अनुभाग स्थान का प्रमाण होता है, वहां कितना अनुभाग था या किसी जीव को कितना होता है उसका प्रमाण हमको मिल जाता है। इसमें से जघन्य स्थान को घटाकर एक कम करने पर दोनों स्थानों का अंतर होता है, यानी पहले वाला स्थान है अंतिम अनुभाग जो उसका, और उसका दूसरा स्थान है उसका, दोनों में डिफरेंस कितना है तो दूसरे का हाँ -1। यहाँ तक समझ में? वृद्धि स्पर्धक शलाकाएं, वृद्धि स्पर्धक यानी जो अभी हम नई जो एक्स्ट्रा जो वृद्धि करते हैं, एक्स्ट्रा जो स्पर्धक बनेंगे, कुछ स्पर्धक तो जघन्य स्थान जैसे ही थे उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा स्पर्धक है, तो वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं का यानी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पर्धक विरलन कर उससे भाग देना, कह हमारी भाषा में क्या कहा था हमने, जितने अनुभाग की वृद्धि है डिवाइडेड बाय वृद्धि स्पर्धक की शलाका है, यानी नंबर ऑफ बढ़े हुए स्पर्धक एक्स्ट्रा स्पर्धक। और उन्होंने कैसे कहा, वो एक्स्ट्रा स्पर्धक को विरलन करो और उसमें वो बढ़ा हुआ अनुभाग समखंड करके दे दो, बात वही है, उनको भाग देने से वही संख्या आती है, तो वो हमको एक एक स्पर्धक में कितनी वृद्धि होती है उसका प्रमाण मिलेगा। तो कहते वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं का विरलन कर वृद्धिंगत अनुभाग को समखंड करके देने पर, वो अनंत गुणा बढ़ा है ना, तो जो उसका प्रमाण बढ़ा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पर्धक, तो विरलन के द्वारा वही बात आती है, तो क्या मिलेगा, एक एक अंक के प्रति वृद्धि स्पर्धकों का प्रमाण होता है, यानी प्रतिस्पर्धक कितनी कितनी वृद्धि होगी उसकी, जैसे पहले मैंने कल जयधवला में से पढ़ के बताया था कि हमने माना हुआ 65,536 था और फिर वो बढ़कर वो 81,920 के कुछ हुआ था,
उसको चार हाँ, डिवाइड किया
तो उसमें ये वृद्धि इतनी हुई और डिवाइडेड बाय 4
16,000
तो 4,096 हमको मिला था, ऐसे यहाँ समझना। तो कहते एक एक अंक के प्रति वृद्धि स्पर्धकों का प्रमाण होता है, ये स्पर्धक वृद्धियां है, क्योंकि स्पर्धक वृद्धियां प्रतिस्पर्धक वृद्धि का प्रमाण है, क्योंकि जघन्य स्थान के अंतिम स्पर्धक के ऊपर इनका प्रक्षेप किया जाने वाला है, वृद्धि स्पर्धक कहो या प्रक्षेप स्पर्धक कहो एडिशन करने जा रहे हैं, इसलिए उसका नाम वृद्धि स्पर्धक कहो या स्पर्धक वृद्धि कहो एक ही बात है। तो शंका कहते इनकी स्पर्धक संज्ञा कैसे, उसको स्पर्धक क्यों कह रहे हैं, यहाँ तो विशिष्ट अनुभाग इतने बार बढ़ा, हमने तो टोटल अनुभाग को नंबर ऑफ स्पर्धकों से भाग दिया, उसी को स्पर्धक क्यों कह रहे हो, ये उनका कहना है। समाधान, कारण कि चिर अनुभाग को छोड़कर, यानी पहले वाला जघन्य स्थान का अनुभाग छोड़कर युगपद वृद्धि को प्राप्त होकर क्रम वृद्धि को प्राप्त अनुभाग की वृद्धि के ही स्पर्धकपना पाया जाता है। यानी पूर्व वो जो स्थान से यहाँ अधिक हुआ है और अधिक हुआ वो तो हमने देखा वर्गणा वगैरह पर एक एक से बढ़ता हुआ, इसको क्रम वृद्धि कहते हैं। तो जहां तक क्रम वृद्धि हुई वहां तक के जो वर्गणाओं का समूह है उसको हम कहेंगे स्पर्धक कहेंगे। भले वो अंतिम वर्गणा के एक वर्ग के अनुभाग को हमने स्पर्धक संज्ञा दी है, परंतु वो कैसा बढ़ा है, क्रम वृद्धि से बढ़ा है, ये उसका अर्थ होता है। युगपद बढ़ा है और क्रम वृद्धि से बढ़ा है, इस उसको स्पर्धक पना पाया जाता है। यहाँ प्रथम अंक के ऊपर रखी हुई राशि को जो हमारा वृद्धि का प्रमाण था, इस राशि को जघन्य स्थान संबंधी अंतिम स्पर्धक के ऊपर रखने पर, अंतिम स्पर्धक का अर्थ है वो जघन्य स्थान का जो मैक्सिमम अनुभाग था उसके ऊपर इसको और एक्स्ट्रा रखा, हाँ उसको रखना, हाँ। परंतु वहाँ वो अनंत भाग वृद्धि वाली बात बताई थी इसलिए वो बात अलग हो जाएगी, हाँ हाँ वैसे ही समझ लो। रखने पर क्या होगा, वृद्धि स्पर्धकों में से प्रथम स्पर्धक होता है, यानी जो प्रक्षेप हम डालने जा रहे हैं स्पर्धक में से पहला स्पर्धक होगा, क्या होगा, जघन्य स्थान का जो अनुभाग था उसमें स्पर्धक वृद्धि का प्रमाण जोड़ दिया तो हमें पहले स्पर्धक का प्रमाण आया, वो हमने उस कहने की उसके ऊपर रखा, हाँ ऐड किया। एक कम स्पर्धक वृद्धि प्रमाण उन स्पर्धकों का अंतर होता है। अभी स्पर्धक का अंतर का अर्थ होता है एक स्पर्धक में जो वृद्धि जो प्रमाण है वृद्धि का प्रमाण है और फिर दूसरा उतनी वृद्धि वाला दूसरा स्पर्धक देखा। मान लेते हैं पहली वृद्धि कितनी हुई, 1000 हुए, 1000 में और 1000 की वृद्धि की, ओरिजिनल तो था ही था, मान लेते ओरिजिनल 10000 था वो 11000 हुआ, 11000 से 12000 हुआ, हर बार 1000 की वृद्धि हुई तो डिफरेंस कितना हुआ, 999 का हुआ, इतना ही कहना उनको। तो कहते हैं एक कम स्पर्धक वृद्धि प्रमाण, स्पर्धक वृद्धि अगर हम 1000 मानते हैं तो एक कम हो जाएगा, उन स्पर्धकों का अंतर होता है, इसको कहते हैं स्पर्धकों का अंतर, यानी वृद्धि स्पर्धक माइनस वन, आपको लिखना है तो ऐसा लिख, स्पर्धक अंतर इज इक्वल टू वृद्धि स्पर्धक माइनस वन। वृद्धि स्पर्धक यानी जो स्पर्धक में जो प्रक्षेप स्पर्धकों में जितनी वृद्धि हुई है वृद्धि के प्रमाण में से एक कम करो तो हमें स्पर्धक का अंतर मिलेगा। तो एक कम स्पर्धक वृद्धि प्रमाण उन स्पर्धकों का अंतर होता है, इसका अर्थ समझ में है ना? एक स्पर्धक वर्गणाओं से हीन स्पर्धक वृद्धि ही अधस्तन और उपरिम वर्गणाओं का अंतर होता है। अभी क्या कहते हैं, अभी हमारे पास दो स्पर्धक है नीचे के, अभी हम पहला हमारा ओरिजिनल उदाहरण देखते हैं, 100 से लेकर 103 तक वर्गणाएं थी और बाद में 200 से लेकर ऊपर चली गई। तो यहाँ कहते वर्गणाओं का अंतर का अर्थ क्या है, अंतिम वर्गणा जो 103 वाली उसका जो अनुभाग है और 200 वाला अनुभाग है उनमें जो डिफरेंस है उसको वर्गणा का अंतर कहेंगे। उसी को किस भाषा में बता रहे हैं, एक स्पर्धक वर्गणाओं से हीन, एक स्पर्धक वर्गणाएं ने अभी हमारे 100 101 102 103 चार वर्गणाएं हुई उससे हीन स्पर्धक वृद्धि, स्पर्धक वृद्धि हमने कितनी मानी है, स्पर्धक वृद्धि अभी 100 माना, 100 मानी उसके उस एग्जांपल में 100 तो स्पर्धक वृद्धि थी और उसमें तीन तीन तो वर्गणा हुई, तो स्पर्धक वृद्धि माइनस अपने अपने वर्गणा ये बीच वाला अंतर होगा। समझ में आते हैं बात, क्योंकि 103 के बाद 200 का आता है तो अंतर कितना पड़ा, वर्गणाओं में अंतर कितना पड़ा, क्योंकि स्पर्धक तो जो वर्गणा तक वृद्धि हुई उसका सबका नाम हमने स्पर्धक रखा, उन बीच में अंतर होकर फिर दूसरे स्पर्धक की वर्गणा शुरू हुई, केवल वर्गणा वर्गणाओं को लेते हैं तो बीच बीच में अंतर अंतर गैप होता है, यानी ऐसे अनुभाग वाले कोई परमाणु ही नहीं पाए जाते उसका अंतर अर्थ होता है। तो ये वर्गणाओं का अंतर कितना है, तो स्पर्धक वृद्धि माइनस एक स्पर्धक की वर्गणाओं का प्रमाण, इसको वर्गणाशाला का भी कहेंगे। तो आप वहां लिखना स्पर्धक का अंतर तो लिखा था ना, स्पर्धक अंतर इज इक्वल टू वृद्धि वृद्धि स्पर्धक माइनस वन, वर्गणा अंतर इज इक्वल टू वृद्धि स्पर्धक माइनस, एक स्पर्धक की वर्गणाशाला का, माइनस वर्गणाशाला का कहो या एक स्पर्धक की नंबर ऑफ वर्गणाएं कहो, एक ही बात है। यानी अभी तो शलाका, यानी एक स्पर्धक में जितनी नंबर ऑफ वर्गणा होती उसको वर्गणाशाला का कहा। ये तो स्पर्धक अंतर क्या है, वर्गणा अंतर क्या है, उसकी बात हमने देख ली। अभी इतना जो क्लैरिटी हो जाएगी अपनी, जो किसको क्या कहना, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। देखो पुनः अभी एक स्पर्धक हमने बनाया, जघन्य स्थान के ऊपर एक वृद्धि स्पर्धक डाला, अब उसके ऊपर और एक प्रक्षेप स्पर्धक को वृद्धि स्पर्धक डालेंगे। तो पुनः द्वितीय स्पर्धक को ग्रहण कर, इस कहां से ग्रहण करके हमने विरलन किया था और उसके हर एक के ऊपर वो समखंड करके दिया था, एक एक के ऊपर हमको एक एक वृद्धि स्पर्धक मिला। तो पहले हमने जघन्य स्थान के ऊपर एक वृद्धि स्पर्धक रखा, प्रक्षेप डाला, फिर उसके ऊपर और दूसरा स्पर्धक रखा, ये उसका अर्थ होता है। तो द्वितीय स्पर्धक को ग्रहण कर प्रक्षेप सूत्र प्रथम स्पर्धक को प्रतिराशि करके प्रक्षेप सूत्र क्यों लिखा है? प्रक्षेप भूत, हाँ, क्योंकि प्रक्षेप सूत्र यहाँ बैठता नहीं। ऊपर देखो, पुनो विधिय पद्यम गेतुण पक्षे व पड़म पद्यम परिराशिय पिकित्ते, वो कुछ डालो नहीं उसमें, बस प्रक्षेप प्रथम सूत्र प्रथम स्पर्धक प्रक्षेप, हाँ प्रक्षेप रूप लिखो, भूत लिखो, चलेगा। प्रक्षेप सूत्र नहीं लिखना, प्रक्षेप प्रथम स्पर्धक कहो या प्रक्षेप रूप प्रथम स्पर्धक। उन्होंने प्रक्षेप भूत किया है अर्थ उसका, यानी पहला जो हमने प्रक्षेप किया था उसके ऊपर ये दूसरा स्पर्धक डालो, ये उसका अर्थ होता है। तो द्वितीय स्पर्धक को ग्रहण कर प्रक्षेप रूप प्रथम स्पर्धक को प्रतिराशि करके उसमें मिलाने पर द्वितीय स्पर्धक होता है। अभी इसका अर्थ समझ में आया ना? पहले हमने जघन्य स्थान के ऊपर एक प्रक्षेप स्पर्धक रखा, अब उस पहला रखा हुआ प्रक्षेप है पहला, यानी वो जघन्य स्थान का पहला नहीं रखा हुआ, एक्स्ट्रा डाला हुआ, उसके ऊपर दूसरा एक्स्ट्रा स्पर्धक रखेंगे। एक कम वृद्धि उक्त स्पर्धकों का अंतर होती है। अभी हमने स्पर्धक अंतर इज इक्वल टू वृद्धि माइनस एक हमने सूत्र बनाया, तो यहाँ वही बात बताई, जघन्य स्थान और उसमें भी उतनी कम वृद्धि का प्रमाण था। अब पहले स्पर्धक और दूसरे स्पर्धक में अंतर भी उतना ही है, वृद्धि माइनस एक, एक स्पर्धक की वर्गणाओं से हीन वही वृद्धि उपरिम और अधस्तन स्पर्धकों की जघन्य एवं उत्कृष्ट वर्गणाओं का अंतर होती है। अभी हमने वर्गणा का अंतर इज इक्वल टू क्या देखा था, वृद्धि माइनस नंबर ऑफ वर्गणाए। अभी ये भाषा बोल देखो, एक स्पर्धक की वर्गणाओं से हीन, यानी एक स्पर्धक की वर्गणा को माइनस करना किसमें से, उसी वृद्धि से, तो वृद्धि माइनस वर्गणाओं का प्रमाण, तो क्या मिलेगा, वर्गणाओं का अंतर। ये कौन से वर्गणाओं का अंतर, तो उपरिम स्पर्धक की जघन्य और अधस्तन यानी नीचे के स्पर्धकों की उत्कृष्ट वर्गणा, वो उन्होंने एक ही वाक्य में दोनों बताए। देखो देखो ऐसा उसको पढ़ना, यानी एक स्पर्धक की वर्गणाओं से हीन वही वृद्धि उपरिम के साथ जघन्य लगा लो, यानी उपरिम स्पर्धकों की जघन्य एवं अधस्तन स्पर्धकों की उत्कृष्ट वर्गणाओं का अंतर होती है। अब समझ में आई बात, ना ना ना, हाँ 200 माइनस 100 होते हैं, बराबर है। देखो ये पहला स्पर्धक था, ये दूसरा स्पर्धक है, स्पर्धकों का अंतर है नहीं, इसका बीच का अंतर माइनस वन, दिस माइनस दिस स्पर्धक, यानी कितनी वृद्धि हुई, इसको वृद्धि स्पर्धक कहा, माइनस वन ये स्पर्धक का अंतर हुआ। अभी जो इतनी वृद्धि हुई है उसमें से ये नंबर ऑफ स्पर्धक किसको कम करो,
वर्गणाशाला का निकाल देके,
वर्गणाशाला का कम करो तो हमें क्या मिले, तो इससे इसका अंतर मिलेगा, ये नंबर ऑफ वर्गणों से वो अंतर बहुत बड़ा होता है। वर्गणे तो बहुत कम है और उसका ऊपर का अंतर बहुत बड़ा होता है। तो टोटल जो है डिफरेंस, उसमें से हमने इसको माइनस किया तो वो गैप वाला यानी वर्गणाओं का अंतर मिलेगा। वर्गणाओं का अंतर किसको कहना, ये ऊपरी स्पर्धक, ऊपरी स्पर्धक की नीचे की वर्गणा और अधस्थ स्पर्धक की उत्कृष्ट वर्गणा, इनके बीच में जो गैप है उसका अर्थ होता है ऐसी कोई परमाणु ही नहीं है कि जिनमें ऐसा अनुभाग पाया जाता है, इसको कहेंगे उसका अंतर है। यहाँ तक ख्याल में ये सब हमने पढ़ा था मगर उसका अर्थ ही क्लियर नहीं हुआ था वहां पर। देखो अब दो स्पर्धकों की बात की, अब तृतीय स्पर्धक को ग्रहण कर, ये प्रक्षेप वाले ही सारे स्पर्धक है। द्वितीय स्पर्धक को प्रतिराशि करके, यानी कौन से स्पर्धक, ये सब प्रक्षेप रूप ही है सब, उसमें मिलाने पर तृतीय स्पर्धक होता है। अब इसमें भी अंतर कितना है, एक कम वृद्धिंगत द्रव्य, द्रव्य का अर्थ यहाँ क्या लेना है अश्विन भाई,
वृद्धिगत द्रव्य, द्रव्य तो वर्ग का जो वृद्धि होती है वो लेना है।
हाँ?
नहीं नहीं वृद्धिगत द्रव्य
वर्ग अनुभाग, अनुभाग को लेंगे यहाँ पर, अनुभाग की बात है ना। देखो एक कम वृद्धिंगत द्रव्य, जिसको हम वृद्धिंगत स्पर्धक कहा था, वृद्धिंगत अनुभाग कहा था। स्पर्धकों का अंतर कैसे निकालते हैं, आप उसका सूत्र पढ़ो, स्पर्धक अंदर इज इक्वल टू वृद्धि अंतर, वृद्धि स्पर्धक माइनस वन, वही कह रहे हैं। ये द्रव्य ने एक कम वृद्धिंगत अनुभाग, बराबर है, जो हमने वृद्धिंगत एक स्पर्धक से दूसरे स्पर्धक में कितनी वृद्धि होती है उसको हमने वृद्धि स्पर्धक कहा था, उसी को यहाँ वृद्धिंगत द्रव्य कहा, उसमें से एक माइनस करो तो स्पर्धक का अंतर मिला। यानी जघन्य स्थान से भी पहले स्पर्धक का अंतर उतना ही था, एक से दूसरे स्पर्धक का अंतर उतना, दूसरे से तीसरा उतना ही अंतर, क्योंकि वो अंतर वहां से फिक्स है अभी। भले जघन्य स्थान में जब हमने देखा था एक स्पर्धक से दूसरा स्पर्धक अंतर तो अलग था, और जहां अनंत गुणा वृद्धि है यहां जो नए स्पर्धक बने हैं उसका अंतर जुदा है, वो भी अनंत गुणा हो जाता है। वृद्धि भी अनंत गुणा हुई तो वो सारा ही अनंत गुणा हो जाएगा। देखो एक स्पर्धक की वर्गणाओं से हीन वही जघन्य व उत्कृष्ट वर्गणाओं का अंतर होता है। अभी जघन्य और उत्कृष्ट वर्गणा नीचे के उत्कृष्ट और ऊपर की जघन्य, यानी ऊपरी स्पर्धक की जघन्य और नीचे की उत्कृष्ट, ये बिटवीन दो और तीन में लगा रहे तो दो का उत्कृष्ट और तीन का जघन्य, इनमें जो अंतर है। इस प्रकार विरलन राशि के चरम अंक के प्रति प्राप्त राशि को क्या कहते हैं, हमने जो जितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पर्धक बनाए हैं उसके लिए हमने विरलन किया था और उसमें टोटल बढ़ा हुआ अनुभाग डाला था, अपनी भाषा में जो अनुभाग में वृद्धि हुई थी उसको हमने नंबर ऑफ स्पर्धकों से भाग दिया था। तो एक एक अंक के प्रति हमें वृद्धि का, वृद्धि स्पर्धक को या वृद्धि का प्रमाण आया था, तो हमने एक अंक के प्रति है उसका पहला स्पर्धक बना, दूसरे का दूसरा स्पर्धक, तीसरे का तीसरा स्पर्धक, इस तरह से एक एक विरलन के प्रति एक एक अंक हम प्रक्षेप स्पर्धक रूप से डालते गए। इस तरह से अंतिम जो एक है विरलन राशि उसके प्रति जो रखा था उसको सबको मिला दिया।
एक क्वेश्चन था,
हाँ,
जगन्य से अनंत गुणा वृद्धि हुई,
हम्म,
वहाँ पे स्पर्धक अंतर प्रति स्पर्धक बढ़ता है, जगन्य से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे में तीसरे चौथा, वहाँ पे स्पर्धक अंतर बढ़ता है?
ना ना ना, स्पर्धक अंतर नहीं बढ़ता, स्पर्धक अंतर सभी के लिए समान, तभी तो हमने उसको भाग दे के विरलन किया और हरेक के प्रति उतनी संख्या ही ना, हरेक के प्रति जैसे कितने 10,000 बढ़ा और 10 स्पर्धक बने तो प्रतिस्पर्धक हजार हजार की सेम वृद्धि हुई, वो नहीं ज्यादा बढ़ा, परंतु ओरिजिनल कुछ था उसमें हमने 1,000 मिला है। ओरिजिनल मान लेते 5,000 का 6,000 हुआ, 6,000 का 7,000, 7,000 का 8,000 हुआ, वृद्धि तो हजार हजार की हुई।
अच्छा वहाँ पे वृद्धि होगी
नेचुरली,
1,000 से 2,000 हुआ तो वहाँ
1,000 से 2,000 नहीं हुआ, ओरिजिनल जघन्य स्थान का अंतिम मान लेते 5,000 था,
हाँ,
और वृद्धि 1,000 की हुई,
पाँच से
और 1,000 वाले 10 बने तो 5 से 6,000 हुए, 6 से 7,000 हुए, क्योंकि उसमें हम ऐड कर रहे हैं, 6,000 में 1,000 मिला है तो 7,000 हुए, 7,000 में 1,000 मिला तो 8,000 हुए, इस तरह से आगे बढ़ना।
तो 5 से 6,000 हुए वहाँ पे स्पर्धा एक ही बना के नहीं, वहाँ
एक बना, केवल एक बना, उसी को तो कहते उसका स्पर्धक बना, यानी वो अंतिम इतना बढ़कर एक स्पर्धक, क्योंकि कितने बार बढ़ेगा तो उतनी संख्या आएगी। हमने टोटल वृद्धि देखी, कितनी वृद्धि हुई टोटल, 10,000 बढ़ी, तो हमने स्टेप बाय स्टेप 10 बार बढ़ी ऐसा कहेंगे उसको, तो उसके हमने 10 स्पर्धक बनाए, प्रक्षेप स्पर्धक। तो ओरिजिनल जगन्य स्थान के स्पर्धक थे उसकी संख्या अलग, प्रक्षेप स्पर्धकों की संख्या भी अलग और उसका प्रमाण भी अलग,
वहाँ पे दोनों का प्रमाण भी अलग,
बिल्कुल अलग। अभी तो ये बात आई नहीं, अभी बताएंगे, यहाँ जो जहाँ तक पढ़ाए वो बात समझ में आई है। एक 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 हम जो विरलन के प्रति एक एक जो वृद्धि स्पर्धक था उसको हम उतनी बार मिलाते गए। तो इस प्रकार पांचवी लाइन, विरलन राशि के चरम अंक के प्रति प्राप्त राशि को द्विचरम स्पर्धक में मिलाने पर, मान लेते ना विरलन राशि हमारी 10 थी, अभी जो मैंने उदाहरण दिया, तो कहते और यहाँ हमने एक 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 ऐड करते 9 स्पर्धक ऐड किए थे, वो 9वां है ना द्विचरम है, 9वें के बाद वो 10वां भी ऐड करो तो अंतिम स्पर्धक बना। द्वितीय स्थान और अंतिम स्पर्धक के उत्पन्न होने तक ले जाना चाहिए, समझ में ना, यानी इसको ये अंतिम स्पर्धक बना कहो या वो हमारा ये द्वितीय स्थान हुआ, पहले से बढ़कर अनंत गुणा वाला ये दूसरा स्थान हुआ, यहाँ द्वितीय स्थान और उसका ही अंतिम स्पर्धक एक नहीं हो सकते, क्योंकि अंतिम अंक के प्रति प्राप्त वृद्धि से युगपत वृद्धिंगत होकर क्रम वृद्धि को प्राप्त ने अनुभाग की वृद्धि को प्राधान्य पद में स्पर्धक स्वीकार किया गया है, तथा द्विचरम स्पर्धक के साथ अंतिम वृद्धि को स्थान स्वीकार किया गया है।
ये समझ में नहीं आया, यह द्वितीय स्थान और उसका
ये कहने की कुछ पद्धति है, ये युगपद वृद्धि और ऐसा कुछ कहने चाहते हैं। अंतिम स्पर्धक अगर उसको कहेंगे, देखो अनुभाग की वृद्धि को प्राधान्य किसको स्पर्धक कहने से युगपद वृद्धिंगत क्रम वृद्धि को प्राप्त प्राधान्य पद में स्पर्धक कहा गया है उसको, ये कहने की बात अलग अलग है। बात तो वही होती है, इतने 10 स्पर्धक बने और 10वें के बाद उसका अनुभाग उतना हुआ।
सो द्वितीय स्थान में अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्ग का एक वर्ग लेना वो द्वितीय
स्थान है,
द्वितीय स्थान है।
तो कहते शंका, यदि ऐसा है तो वृद्धि का प्रक्षेप करने पर स्पर्धक होता है, यह कथन कैसे घटित होगा? उन्होंने ये तो टेक्निकल बात है कि वो उसको स्पर्धक क्यों नहीं कहना, बस इतनी बात है। तो कहते आप तो उसी को कह रहे हैं युगपद, यानी वृद्धि होती है तो उसको स्पर्धक, आपने उसके इतने स्पर्धक बनाए, इतना विरलन किया, अब उसको आप स्पर्धक क्यों नहीं कह रहे, ये उनकी शंका है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संयोग स्वरूप से पहले उत्पन्न हुए स्पर्धक की भी कथनचित उत्पत्ति स्वीकार की गई है। यानी यहाँ किसको क्या कहना इसके बारे में बात है, बाकी हमने जो एक एक प्रक्षेप बढ़ाते बढ़ाते अंतिम वहां अनुभाग तक पहुंच गए, ये बात तो सर्वत्र घटित हो जाती है। अब इस द्वितीय स्थान संबंधी स्पर्धकों के अंतर जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धकों के अंतरों से अनंत गुणे हैं। अब यहाँ से आपके प्रश्न जो सब कुछ चल रहे हैं उसका यहाँ उत्तर है। क्या कहा? स्पर्धकों का अंतर हमने कैसा देखा था? जितनी मैक्सिमम वृद्धि हुई है एक्स्ट्रा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पर्धक, उसको स्पर्धक वृद्धि स्पर्धक मिला और उसमें से एक माइनस करेंगे तो स्पर्धक अंतर हो जाता है। तो कहते द्वितीय स्थान संबंधी स्पर्धकों के अंतर जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धकों के अंतरों से अनंत गुणे हैं। यानी वो तो इतनी इतनी वृद्धि होती है ना प्रतिस्पर्धक, बहुत ज्यादा होती है, अनंत गुणा होती है। तो गुणकार क्या है? सब जीवों से अनंत गुणा है। यथा अभव्य सिद्धों से अनंत गुणी और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धक शलाकाओं का जघन्य स्थान में भाग देने पर एक स्पर्धक होता है। हमने बात देखी थी यहाँ जघन्य स्थान किसको कहेंगे, जघन्य स्थान के जो अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा का एक अनुभाग वहाँ के अनुभाग को जो जघन्य स्थान में जितने नंबर ऑफ स्पर्धक हो गए उसको भाग देंगे, तो क्या मिलेगा हमको? एक स्पर्धक का प्रमाण मिलेगा। समझ? अभी जैसे हमने वृद्धि का कैसा निकाला, जितनी वृद्धि हुई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पर्धक। ओरिजिनल स्थान है, हमको जघन्य स्थान देखना है। जघन्य स्थान का जो अंतिम अनुभाग है डिवाइडेड बाय वहां के नंबर ऑफ स्पर्धक, तो हमें एक एक स्पर्धक की वैल्यू मिलेगी। उसमें से एक कम करने पर जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धकों का अंतर होता है। बात वही है, स्पर्धक अंतर कैसा, जब हमने वो वृद्धि प्रक्षेप में जो वैसा ही नाम लिया था कि वृद्धि स्पर्धक प्रमाण माइनस एक, यहाँ जघन्य स्थान की स्पर्धक माइनस एक। फिर द्वितीय स्थान की वृद्धि को जो पहले स्थान से दूसरे स्थान में जो अनुभाग की अंतिम जो वृद्धि हुई है टोटल मैक्सिमम, वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं से खंडित करने पर स्पर्धक होता है। ये कौन सा स्पर्धक? प्रक्षेप स्पर्धक, यानी जिसको वृद्धि स्पर्धक कहेंगे। ये स्पर्धक का अर्थ होता है प्रक्षेप स्पर्धक या वृद्धि स्पर्धक। उसमें से एक कम करने पर स्पर्धकों का अंतर होता है, जिसको हमने वृद्धि स्पर्धक का अंतर देखा था। जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धक का द्वितीय स्थान संबंधी वृद्धि स्पर्धक में भाग देने पर, यानी वो स्पर्धक भी कितना होता है, जैसे हमने जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धक जो देखा था और वहां का अंतर, तो जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धक का द्वितीय स्थान संबंधी वृद्धि स्पर्धक में भाग देने पर सब जीवों से अनंत गुणा गुणकार आता है। इसी प्रकार स्पर्धकों का अंतर का भी गुणकार सिद्ध करना चाहिए। जैसे हमने देखा था ना, यहाँ 103 102 हमने वो स्पर्धक कहा, उसका अंतर कितना है, वो 100 माइनस एक यानी 99, हमने 99 उसका अंतर देखा था। स्पर्धक वो 100 वाला था, स्पर्धक का प्रमाण 100 से बढ़ोतरी हुई थी और अंतर 99 था। अभी अनंत गुणा बढ़ा तो 100 के बदले वहां 1000 हो गया और अंतर 1000 में से कम करेंगे, यानी 99 से 999 हो गया ना, अंतर टू अंतर भी इतना गुणकार हुआ और स्पर्धक टू स्पर्धक भी इतना गुणकार, करीबन 9 गुना हो गया वहां पर। समझ में आती है ना बात? नहीं, देखो स्पर्धक पहले 100 वाला था, एक एक स्पर्धक स्पर्धक प्रति 100 की वृद्धि होती थी, उसको स्पर्धक की वैल्यू हमने देखी। अब इसकी 1000 की हो गई वृद्धि, स्पर्धक की वैल्यू कितनी हो गई, प्रतिस्पर्धक 1000 बढ़ रहे, अंतर कितना 1000 माइनस 1 और यहाँ अंतर कितना था 100 माइनस 1, यानी 100 का 1000 हुआ और यहाँ 99 का 999 हुआ, करीबन उतना ही अंतर हुआ ना। ऐसे उसको 10 गुना करे तो 990 होना चाहिए, यानी वो इतना अनंत गुना वो भी हो जाता है, बस इतना कहना है उनको। इसी प्रकार स्पर्धकों का अंतर का भी गुणकार सिद्ध करना। यहां तक समझ में आई अभी बातें? इसी प्रकार अभी यानी दो द्विचरम स्थान में क्या क्या होता है, पहले जघन्य स्थान जैसे वो स्पर्धक होते हैं, उसके ऊपर अलग से स्पर्धक होते हैं। अभी उसके एक समय पूर्व तक चला जाना, वहां का जो बंध स्थान है वो अनंत गुणा से भी अनंत गुणा है, यही कह रहे। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्रायिक के त्रिचरम समय से लेकर जो बंध स्थान है उन सभी के स्पर्धकों की रचना इसी प्रकार करना चाहिए। विशेष इतना है कि द्वितीय बंध स्थान से तृतीय बंध स्थान अनंत गुणा है, तृतीय से चतुर्थ बंध स्थान अनंत गुणा है। इस प्रकार अनंत गुणित श्रेणी से सूक्ष्म सांप्राय और अनित्यकरण क्षपक कालों में ले आना चाहिए। पीछे पीछे है तो उसका कितना बंध था, वो अनंत गुणा था, उसके पहले अनंत गुणा था, उसके पहले अनंत गुणा था। और जब हम अनुभाग अनंत गुणा घटता है जब ऐसा कहते हैं, तो वैसे वैसे उसके इतने, क्योंकि ऊपर ऊपर के अनंत गुणा वाले जो अनुभाग वाले स्पर्धक, एक भी कम जाए तो अनंत गुणा का डिफरेंस पड़ जाता है उसके अंदर। हमेशा जो अनुभाग कांडक में आता है, हमेशा आता था अनंत बहुभाग का घात हुआ, अनंत वे भाग प्रमाण स्पर्धक रहे, तो अनंत वे भाग प्रमाण स्पर्धक रहे, तो इतना स्पर्धक रहे, टोटल अनुभाग अनंतवा भाग रहा, अनंतवा भाग रहा, अनंतवा भाग रहा। यानी नहीं तो केवल जैसे हम सिटी की रचना देखते, अरे अनंत बहुभाग का अनंत भाग रखा तो उसका अनंत भाग कितना कम हो जाएगा, तो कहते वैसा नहीं है। इस भाषा में समझना, उसका अनुभाग की भाषा में समझना, तो क्लैरिटी हो जाती है। क्योंकि इतनी बार अनंत 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 भाग वाली बात, अनंत गुणा वाली, हाँ यानी बहुभाग बहुभाग, हमेशा कांडक घात में बहुभाग का घात होता है अनुभाग के, और कभी कभी आगे चलकर तो प्रति समय अपवर्तन होता है। सत्ता में पड़ा हुआ अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा घटता है, अनंत गुणा घटता है, तो ये जो पूर्व पूर्व के अधिक अनुभाग वाले जो थे स्पर्धक, वो नष्ट होते चले जाते हैं। अभी आगे बढ़ते, यहाँ तक समझ में है ना? आठवें में शायद ऐसा भी हो सकता है ना, अलग अलग जीवन की अपेक्षा जो कुछ अलग, क्योंकि नौवे से तो नौवे के, हाँ नौवे से सबके समान है परिणाम, अनुभाग सबका समान ही होगा। वहाँ पहले उन्होंने अपूर्व करण तक ले जाना चाहिए ऐसा लिखा था।
एक जीव की अपेक्षा तो अनंत गुण,
एक जीव की अपेक्षा तो होता है, पर अलग अलग जीवों की अपेक्षा फिर भी वो अनंत गुण
अनंत गुण
हो जाएगा,
क्योंकि वहाँ पे कांडक का प्रमाण बहुत छोटा है।
और उन्होंने ऐसे करके नीचे तक लाया है ना उनको। देखो इस प्रकार अनंत गुणी श्रेणी से सूक्ष्म सांपरा अनिवृत्तिकरण कपट कालों में ले जाना चाहिए। पुनः इन बंद स्थानों में अधस्तन स्थान के अंतर से ऊपरी स्थान का अंतर अनंत गुणा है। अधस्तन यानी नेक्स्ट वाले समय, क्योंकि हम उल्टे क्रम से नीचे आ रहे हैं, तो पहले वाला स्थान बाद में होगा, पूर्व का स्थान पहले समय में होगा। तथा अधस्तन स्थान के स्पर्धकों के अंतर से भी ऊपरी स्थान के स्पर्धकों का अंतर अनंत गुणा है। इसका अर्थ समझ में आया? स्पर्धक अंतर भी अनंत गुणा बढ़ता है, क्योंकि वह अनंत गुणित श्रेणी की श्रेणी से वृद्धि को प्राप्त हुआ है। अनुभाग अनंत गुणा श्रेणी से हमने ऊपर चढ़े तो बंध अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन हुआ था, तो वो स्थान सारे अनंत गुणाहीन, नीचे से ऊपर देखेंगे अनंत गुणाहीन वाले स्थान थे। अभी हम अंत समय से उल्टे क्रम से आ रहे हो, तो स्थान कैसे अनंत गुणित क्रम से है ये कहना चाहते हैं। जहाँ अनंत गुणा विशुद्धि होती है ना, वहाँ उसी क्रम से नीचे तक आ जाना है। अब कहते हैं संयम के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव के, अब ये मिथ्या दृष्टि जीव लिया और उसका अंतिम समय लिया। देखो इसके पूर्व में एक वाक्य आया था, जहाँ वो नीचे हम कहाँ तक ले जाना उसकी चर्चा आई थी ना, वो जगह ने निनीसी में, जगह ने कहाँ होता है उसकी स्थान प्ररूपना भी आता ही ना बात। ये पहले भी आई थी ना सूक्ष्म सांप्राय की बात आई थी। हाँ देखो पेज नंबर 111 पर पहले जघन्य स्थान का कथन करने के बाद सेकंड लाइन 111 पेज पर, इसी प्रकार द्विचरमादि यानी सूक्ष्म सांप्राय के उपांत समय में अनुभाग बंध स्थानों का भी कथन करना चाहिए, विशेष इतना कि जघन्य बंध स्थान से द्वितीय बंध स्थान अनंत गुणा है, अनुभाग जो अंतिम जो है उससे तृतीय बंध स्थान अनंत गुणा है। इस प्रकार अपूर्व कर्ण संयत तक ले जाना चाहिए, उसके आगे के अनुभाग स्थान बंध स्थान उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान तक, उत्कृष्ट तक ले गए, वो उत्कृष्ट कहाँ होगा अनुभाग बंध स्थान? हाँ मिथ्या दृष्टि संक्लेश परिणाम वाला जागृत
जागृत,
वो वहाँ अनंत गुणा वृद्धि वाले होते हैं, वहां पर अनंत गुणा वाले वहां स्थान हो गए। तो कहते उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान तक छह प्रकार की वृद्धि से जाते हैं। छह प्रकार के यानी कभी अनंत गुणा वृद्धि वाले स्थान है, कुछ कुछ अनंत भाग वृद्धि संख्यात भाग वृद्धि, सब छह स्थान होते हैं। जघन्य स्थान को छोड़कर अभी इसका अर्थ ज्यादा क्लियर होगा, पहले पढ़ा था हमने, शेष सब स्थानों में जघन्य वर्गणा व जघन्य स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेदों से उत्कृष्ट वर्गणा व उत्कृष्ट स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुणे हैं और गुणकार सब जीवों से अनंत गुणा है और स्पर्धकांतर विसदृश है। ये मुख्य बात है। स्पर्धकांतर विसदृश है, हमने देखा था केवल दो स्थानों में हमने चर्चा की थी, जघन्य और नेक्स्ट। तो उसमें भी पहले जो स्पर्धक का अंतर था वो जघन्य स्थान के सदृश था और ऊपर जो अंतर था वो अनंत गुणा वाला हुआ था, तो विसदृश हुआ था। इसलिए कहते स्पर्धकांतर विसदृश है क्योंकि छह प्रकार की वृद्धि द्वारा अनुभाग बंध की वृद्धि देखी जाती है। ये विसदृश होते, कभी हमने देखा था, एक ये भी बात देखी थी, नंबर ऑफ जो स्पर्धक बनते हैं अनंत भाग वृद्धि के लिए नंबर ऑफ स्पर्धक उतने उतने बनते हैं।
अनंत भाग बनेगा
स्पर्धक की, यानी नंबर ऑफ स्पर्धक सबके लिए सेम, जहाँ असंख्यात भाग वृद्धि नंबर ऑफ स्पर्धक सबके लिए सेम, एक से एक बार अनंत भाग वृद्धि हुई तो जितनी वृद्धि हुई उसका अनंत भाग दूसरी बार बढ़ेगा, परंतु स्पर्धक उतने ही बनेंगे, यानी वो स्पर्धक का अंतर अनंत भाग बढ़ेगा।
जब भी हम लोग जो ऊ देखते हैं वहाँ पे अनंत भाग वृद्धि अंगुल के संख्या पे भाग होती है, वहाँ पे स्पर्धकों की संख्या समान
सेम रहेगी। वो कल पढ़ा था हमने, कल आपको पढ़ा, जयधवला में से पढ़कर
पढ़ा था।
ये बात जयधवला में से पढ़कर बताई थी कि जो प्रक्षेप वृद्धि जो है कौन सी सजातीय, सजातीय ने जहाँ जहाँ असंख्यात भाग वृद्धि होती है उसके लिए सभी के स्पर्धकों का प्रमाण सेम, वो बात हमने कल पढ़ी थी उसमें। तीन सौ छियासठ कुछ पढ़ा था, देखो हाँ 371 लास्ट में। नहीं, ये सबके जो उसका जो ये 374 पर शुरू में बताइए, देखो सब प्रक्षेपों की स्पर्धक शलाकाएं, सब प्रक्षेपों की स्पर्धक शलाकाएं सजाती प्रक्षेपों की स्पर्धक शलाकाओं के समान ही होती है। सजाती का अर्थ है जो वृद्धि का प्रमाण है, अनंत वा भाग बढ़ता है तो हर बार जहां जहां अनंत भाग वृद्धि है तो नंबर ऑफ जो एक्स्ट्रा स्पर्धक शलाका बनी है उसका नंबर सेम होगा और जितना बढ़कर हुआ उसका अनंत वा भाग बढ़ेगा, अनंत वा भाग बढ़ेगा, अनंत वा भाग बढ़ेगा और स्पर्धक उतने ही बनेंगे। तो अंतर बढ़ेगा ना, स्पर्धक का अंतर बढ़ेगा क्योंकि अगर वर्गणा भी बढ़ाते हैं, यानी सॉरी स्पर्धक भी बढ़ाते हैं तो अंतर उतना का उतना रह जाता या कम भी होता कभी, यानी विशिष्ट वृद्धि के लिए नंबर ऑफ स्पर्धक उतने ही बनेंगे। उसको कहा था सजाती प्रक्षेपों की स्पर्धक शलाकाओं के समान होती है, ये उसका अर्थ है। 374 पेज पर मैंने पढ़ा था जयधवला में।
विद्या दृष्टि को जो स्पर्धक बनते हैं वहाँ पे छह प्रकार की वृद्धि देखी जाएगी वर्गणा शलाका।
अरे छह प्रकार की वृद्धि तो ऊपर भी देखी जाएगी, सम्यक दृष्टि को सब जगह होगी। केवल श्रेणी में जहाँ जो करण लब्धि होती है
वहाँ पे एक ही वृद्धि,
जहाँ अनंत गुणा वाली, जहाँ अनंत गुणा हीन बंध है, उल्टे क्रम से हमने अनंत गुणा देखे थे। बाकी सर्वत्र उन्होंने क्या कहा, वो तो अपूर्व करण तक ले जाना और बाकी सर्वत्र उत्कृष्ट तक छह प्रकार की वृद्धि संभव। मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट अनुभाग स्थान का अर्थ है मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अनुभाग स्थान बंध स्थान। हाँ छह प्रकार की
एक क्वेश्चन है, जो श्रेणी में हमने अनंत गुणा वृद्धि देखी ऊपर से नीचे उतरते थे वहाँ पे स्पर्धक शला का अंतर भी अनंत गुणा हो जाता है प्रति अनुसमय वर्तना में जो एक समय।
आप शलाका का अंतर क्यों कह रहे हैं, स्पर्धक का अंतर कहो या नंबर ऑफ शलाका कहो?
नहीं, स्पर्धक का अंतर वो अनंत गुणा होता
होता है
और मिथ्या दृष्टि को
मिथ्या दृष्टि को अभी हम बताएंगे।
नहीं, मिथ्या दृष्टि से सातवें गुण स्थान तक भी यही होगी कि वहाँ पे अनंत गुणा वृद्धि होगी।
नहीं, ऊपर सारे छठ स्थान वृद्धि वहाँ तक ले आना, अब ये मिथ्या दृष्टि में आना है आपको। तो मिथ्या दृष्टि में भी किसके जघन्य होगी? संयम के सन्मुख बने। अपन संयम के सन्मुख जो परिणाम होते हैं ना, सब जीवों का एक समान नहीं होगा। अरे उसमें असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो गए। एक संयम के सन्मुख परिणाम है, उसमें असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग के अलग अलग स्थान हो गए। एक एक समय की बात है। यही तो अनिवृत्ति के अंतिम समय में विशुद्धि के इतने स्थान हो गए। अभी हम पढ़ेंगे इसमें से। मिथ्या दृष्टियों में कंपैरिजन करना है तो मिथ्या दृष्टियों में सबसे जघन्य अनुभाग किसको है? बंद की बात है।
संयम के सन्मुख
बंद की बात है, सत्व की नहीं, बंद की बात है। तो संयम के अभिमुख वाले, पर संयम के अभिमुख वाला एक जीव लेते हैं तो उसमें भी अनुभाग की अपेक्षा स्थान कितने हैं, ये इतने वेरिएशन है। क्योंकि कुछ थोड़ी विशुद्धि के साथ मिथ्या तो से संयम ही होता है, कोई थोड़ी अधिक विशुद्धि, वो तो विशुद्धि के स्थान यानी वो तो स्थितिबंध अध्यवसान स्थान हुए। और एक एक स्थितिबंध अध्यवसान स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध अध्यवसान होते हैं, उसकी सूक्ष्मता और अधिक है। अभी हम इसमें से पढ़ेंगे ये बंध स्थान। हम पहले तो सम्यक दृष्टि यहाँ से मिथ्यात्व से सातवें में जाने वाले की बात करें, उसी के असंख्यात लोक प्रमाण जुदे जुदे अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान हो गए एक स्थिति बंध के लिए। और वो भी जघन्य में लेना है ना, जघन्य स्थिति और अनुभाग भी जघन्य लेना है। ये जघन्य स्थिति के कारणभूत असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग स्थान विशुद्धि के है, जिसको हम स्थिति बंध अध्यवसान स्थान में, उसमें से वो जघन्य वाला लो, उसमें भी अनुभाग स्थान असंख्यात लोक है। अब यहाँ से पढ़ेंगे वो, यहाँ मिथ्या दृष्टियों में बंध के योग्य जो अलग अलग स्थान है उसमें से सर्व जघन्य स्थान किसको है? वो संयम के अभिमुख वाले मिथ्या दृष्टि को। ऊपर जो सम्यक दृष्टियों में अलग अलग वो तो बता चुके, वो उसमें भी वो षट स्थान बहुत सारे हो गए। अभी हम मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, ऊपर सम्यक दृष्टियों के और क्षपकों की बात कहकर आए, अभी यहाँ क्या कहते उसको देखेंगे। ये तो हमारा सब 18वें लेक्चर में, आज नंबर 20 लेक्चर चल रहा है, अभी समझ के जा रहे हैं जरा, है ना। देखो संयम के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती, करण लब्धि का अंतिम समय है और उसमें भी सर्व विशुद्ध जीव लिया। क्योंकि विशुद्धि के अलग अलग ग्रेडेशंस के साथ कोई जीव मिथ्यात्व से संयम में जा सकता है। उसके वे हमने देखे थे, बहुत सारे जीव जाते अलग अलग विशुद्धि के, वो विशुद्धि के परिणाम भी असंख्यात लोक प्रमाण जुदे जुदे। सब समान होती है परंतु उसमें से भी वो विशुद्धि की अपेक्षा लेना उसमें। यहाँ लिखा है ना, मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञानावरण के जघन्य स्थितिबंध के योग्य असंख्यात लोकमात्र विशुद्धि स्थान है। हमने ये भी देखा था कि तो कोई आर्य भी और अम्लेज भी ऐसा भी उसमें भेद किया है, वो हमने संदृष्टि देखी थी। सातवें में जाने वाले की भी अलग अलग विशुद्धियों के साथ वो जा सकते, जैसे पहले से पांचवें में जाने वाले तो तीरियंचे वो कम विशुद्धि के साथ भी पांचवें में जाते, मनुष्य अधिक विशुद्धि के साथ जाते हैं। और सर्वाधिक विशुद्धि मनुष्यों की होगी, तीरियंचों की नहीं होगी। तीरियों की रीच बीच में, हाँ, उसकी रेंज अलग होगी, मनुष्यों की रेंज अलग होगी। इस तरह से हम देख सकते हैं उसको। मेरे ख्याल से तीरियंचों की रेंज बीच वाली है,
तीरियंच के कम है।
नहीं नहीं, बीच वाली है। मनुष्य कम विशुद्धि के साथ भी और मैक्सिमम विशुद्धि के साथ भी जा सकते हैं, और बीच वाली जो रेंज है वो तीरियंचों की है। यानी तीरियंचों से भी जघन्य विशुद्धि के साथ जीव जा सकता है पांचों में, इस तरह उसका अर्थ लेना। ऐसा ही अल्पबोध तो उन्होंने म्लेच्छ और आर्यो में लगाया है, आपको वो संदृष्टि याद होगी तो
पढ़ा तो है। पर अभी
यानी जो सातवें में जब आते हैं ना, उसको कौन सा स्थान लिए, एकांत वृद्धि के स्थान लिए थे ना, और वो गिरने वाले वो प्रतिपाद स्थान देखे थे। ठीक है,
तो अभी तक हम लोग जो पढ़ के आए उसका अर्थ हम लोग को भाषित ही नहीं हो रहा था
उस दिन, नहीं भाषित हुआ था पहले दिन।
अभी तक हम लोग ये तो अभी तीन दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, पर उसके हमने जब ये पति स्थान और वो वृद्धि के स्थान देखे थे अनंत गुण वृद्धि
कहाँ पर
नहीं जो सम्यक्तों के सन्मुख वो जो हमने पढ़ा था वो बहुत
कौन सा पढ़ा था
जो हम लोग पहले से सातवें में जाते उसके असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है कभी हम लोग को सही और भाषित थी।
देखो देखो वो तो हमने पढ़ा था उसको समझा भी था पर अभी वो भूल जाते हैं ना बार बार। आपने स्कूल में कितनी बातें याद की थी, रटा भी था, परीक्षाएं भी दी थी, पास भी हुए थे, कितनी बात याद है। इसलिए बारंबार स्वाध्याय से वो तो बात और उसमें कोई सूक्ष्म पॉइंट्स और ख्याल में आते हैं हमारे, भूल जाते हैं ना। और ये विषय ऐसा है कि क्योंकि हमने महाबंध में भी अनुभाग संबंधी बातें देखी है महाधौला में और जयधौला में ये सब पढ़ चुके थे ना, वो कितना याद था। अभी उसको पढ़कर भी 10-11 साल हो गए। अभी देखो अभी यहाँ से फिर पढ़ते ना, संयम के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव के ज्ञानावरण के जघन्य स्थिति बंध के योग्य। ये जघन्य स्थिति बंध से उठाया है, मिला कहाँ मिला, नीचे है पेज नंबर 120 नीचे से दूसरा पैराग्राफ। तो कहते जघन्य स्थिति बंध के योग्य, मिनिमम स्थिति वाला केस लिया, मिनिमम स्थिति बंध रही है। असंख्यात लोकमात्र विशुद्ध स्थान है जिसके हमने स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों की चर्चा की थी उसको केवल यहाँ विशुद्ध स्थान रूप से बता रहे। फिर उनमें यानी वो जघन्य स्थिति के कारणभूत परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण, तो असंख्यात लोक प्रमाण नंबर 1 से लेकर असंख्यात लोक कितने हम नंबरिंग करेंगे ना उसके, तो उसमें से उनमें असंख्यात लोक मात्र उत्तर कारणों की सहायता युक्त, उत्तर कारणों की सहायता यानी वो तो भी अनुभाग की अपेक्षा बताना है, उत्कृष्ट अंतिम विशुद्धि के द्वारा बांधे जाने वाले अनुभाग के ये उत्तर कारण है ना, क्योंकि एक ही परिणाम है, सिंगल एक समय का एक परिणाम है, परंतु स्थिति कोई पर्टिकुलर बन रही है पर परिणामों में इतने वेरिएशंस हो सकते हैं असंख्यात लोग। अब उसमें से सर्व विशुद्ध परिणाम लेना है, वो सर्व विशुद्ध एक परिणाम है, उसमें जो कोई अन्य उत्तर कारणों का हेतु पड़ता है उसमें क्या है, उत्कृष्ट अंतिम विशुद्धि के द्वारा बांधे जाने वाले अनुभाग के विशुद्धि स्थान असंख्यात लोक मात्र है।
तो ग्यारहवर्ण का जब भी संयम के सन्मुख जो जघन्य बंध होता है वहाँ पे भी अनुभाग की अपेक्षा असंख्यात लोक वेरिएशन होगा,
यही कह रहे हैं। ये जघन्य स्थिति बंध हुआ उसके कारणभूत विशुद्धि के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण, उसमें से जो
उत्कृष्ट
जघन्य विशुद्धि उत्कृष्ट विशुद्धि तो मैक्सिमम विशुद्धि वाला स्थान लिया, विशुद्धि ज्यादा है ये विशुद्धि के स्थान, विशुद्धि कोई जघन्य से भी उसकी इतना बंद है उत्कृष्ट विशुद्धि की उतना ही बंद किया, कितना स्थिति का बंद है। अब ये एक पर्टिकुलर इसमें से असंख्यात लोक में से एक उत्कृष्ट विशुद्धि का एक परिणाम लिया, पर ये उत्कृष्ट विशुद्धि है पर उसके साथ और जो उत्तर कारणों की सहायता युक्त ऐसा जो कुछ अलग उनके बाद बताई जो कुछ होता होगा, तो कहते उत्कृष्ट अंतिम विशुद्धि के द्वारा बांधे जाने वाले अनुभाग के विशुद्धि स्थान, अब इसमें अनुभाग के विशुद्धि स्थान अपने असंख्यात लोक प्रमाण होते, एक ही स्थिति बंध उसके कारणभूत परिणाम असंख्यात लोक ये विशुद्धि के स्थान कहेंगे, उसमें टोटल उत्कृष्ट विशुद्धि से बांधे गए अनुभाग स्थान असंख्यात लोक मात्र होते, वहां असंख्यात लोक मात्र षट स्थान होते। केवल असंख्यात लोक मात्र स्थान नहीं है, उसमें अनंत गुणा वृद्धि वाले षट स्थान जो है वो भी असंख्यात लोक बार होते। हाँ स्थिति 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 बंध का स्थान, मिनिमम स्थिति बांधी, अंत कोड़ा कोड़ी बांधता है पर ये जघन्य स्थिति उसके कारणभूत विशुद्धि के परिणाम असंख्यात लोक, तो असंख्यात लोक प्रमाण विशुद्धि के परिणाम है, उसमें से टॉप मोस्ट एक विशुद्ध वाला परिणाम लिया तो उसके साथ अनुभाग स्थान कितने अलग अलग बन सकते हैं, तो असंख्यात लोक प्रमाण यानी एक पर्टिकुलर स्थिति के साथ
असंख्यात
लोक प्रमाण विशुद्धि और उस हरेक के साथ असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग हरेक के साथ हर एक अलग अलग जो विशुद्धि के स्थान देखे उसके अपने अपने असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान अलग, इसलिए हम हमेशा देखते हैं एक स्थिति बंद है उससे असंख्यात लोक और उससे असंख्यात लोक गुणा, यानी अनुभाग स्थान असंख्यात लोक इंटू असंख्यात लोक एक पर्टिकुलर स्थिति के लिए, ये उसका अर्थ होता है। और केवल असंख्यात लोक इतना ही नहीं, उसमें असंख्यात लोक तो षट स्थान है, यानी कोई एक विशुद्धि का जो अनुभाग का स्थान है, कहीं वो अनंतवा भाग बढ़कर अन्य अनुभाग का स्थान है, अनंतवा भाग बढ़कर अनंतवा भाग बढ़कर फिर असंख्यातवा भाग, ये पूरा जो झमेला है पूरा कौन सा षट स्थान वृद्धि वाला, एक बार अनंत गुण वृद्धि होती है एक बार, ये एक बार षट स्थान हुआ तो उसमें कितने कितने स्थान आगे चले जाते हैं, ऐसे ऐसे षट स्थान असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। अब शंकाकार कहते हैं षट स्थान किसे कहते हैं, तो ये षट स्थान का यहाँ स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। हाँ देखो क्या कहते हैं,
ये आपने जो षट स्थान लिए है वो अनंत गुण वृद्धि के ही षट स्थान लिए है ना, अनंत गुणावृत्ति क्योंकि प्रतिष्ठान
सबका मिलकर होता है,
संस्थान बराबर है पर यहाँ पे जो संयम के सन्मुख जो जीव होता है उसको प्रति समय अनंत गुणावृत्ति होती है,
एक समय लिया अभी प्रति समय कहाँ है वहाँ पर,
अच्छा एक समय में परिणामों की
अंतिम समय है, नेक्स्ट समय वो संयमी होने वाला है, उस समय की बात है, एक समय की बात है,
नाना जीव
हो या एक जीव हो एक ही परिणाम है वहाँ का, यानी अपना अपना एक एक परिणाम है, नाना जीवों की अपेक्षा उसमें इतने स्थानों की चर्चा कर रहे, ख्याल में आई बात। हाँ देखो षट स्थान किसे कहते उसकी बात यहां से चलेगी, समाधान जहां पर अनंत भाग वृद्धि स्थान कांडक प्रमाण जाकर, कांडक यानी कितनी बार तो सुचंगुल के असंख्यात हुए भाग बार, तो अनंत भाग वृद्धि जिसको हमने ऊ कहा था, ऊ और ऊ दो बार लिखा तो उसका क्या अर्थ होता है, कांडक बार हुए, तो कहती जहां पर अनंत भाग वृद्धि स्थान यानी एक स्थान से दूसरे भाग स्थान में अनंतवा भाग बढ़ा फिर अनंतवा भाग बढ़ा, जितना बढ़ा ना उसका अनंतवा भाग तीसरे बार बढ़ा, ऐसे कितने बार हुआ तो असंख्यात बार हुआ, उसको भी कहते कांडक प्रमाण जाकर, एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है वो गुरु बराबर करना वृद्धि, फिर भी अनंत भाग वृद्धि के ही कांडक प्रमाण स्थान जाकर द्वितीय असंख्यात भाग वृद्धि होती है, ऊ चार ये दो बार हुआ, ऐसा तीन बार चार बार पांच बार, इस क्रम से कांडक प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धियों के बीतने पर, ऊ चार और ऊ चार हुआ तो चार कांडक बार हुए ना, दो बार हुए ने कांडक बार हुए, फिर से कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धि आ जाकर, फिर से ऊ लेना, ऊ चार के बदले चार और पांच नहीं लेना, फिर ऊ लेकर फिर पांच लेना, एक बार संख्यात भाग वृद्धि होते ने पांचवा नंबर आता है, पश्चात पूर्वोदिष्ट समस्त अधस्तन अध्वान जाकर, यानी वो ऊ चार ऊ पांच ये पूरा अधस्तन अध्वान जाकर द्वितीय संख्यात भाग वृद्धि होती है, यानी वो पांच दूसरी बार आया, फिर से भी उतना मात्र ही अध्वान जाकर, यानी अभी छह आने के लिए भी ऊ चार और ऊ छह लिखना पड़ेगा, फिर तृतीय संख्यात भाग वृद्धि, इस प्रकार कांडक प्रमाण संख्यात भाग वृद्धियों के बीतने पर संख्यात भाग वृद्धि की उत्पत्ति के योग्य एक अन्य अध्वान जाकर एक बार संख्यात गुण वृद्धि होती है, इसका अर्थ समझ में आती है बात, पहले अनंत भागे ने ऊ, असंख्यात भागे ने चार, संख्यात वे भागे ने पांच, यानी जैसे ऊ चार ऊ पांच एक बार पांच हुआ, फिर ऊ चार ऊ पांच दो बार पांच हुआ, दो बार हुआ यानी असंख्यात बार हुआ, तो फिर पूरा ऊ चार ऊ छे ऐसा लेना, पश्चात फिर से आगे समस्त अधस्तन अध्वान जाकर, यानी छह के लिए हमने जितना सब लिखे थे वो पूरा अध्वान जाकर द्वितीय संख्यात गुण वृद्धि होती है, यानी हमने 6 एक बार लिखने के लिए 9 कॉलम लिखे थे, फिर दोबारा वो 9 कॉलम लिखे तो 6 दूसरी बार आया, और दो बार आया यानी असंख्यात बार आया, तो फिर 9 कॉलम और तीसरी बार लिखो, अंत में 6 लिखने के बदले 7 लिखो, तो तीसरी पंक्ति के लास्ट में 7 आ जाएगा। इस विधि से कांडक प्रमाण संख्यात गुण वृद्धियों के बीतने पर फिर से संख्यात गुण वृद्धि विषयक एक अन्य अध्वान जाकर एक बार असंख्यात गुण वृद्धि होती है, यानी वो असंख्यात गुण वृद्धि होती है, यानी 7 नंबर आने के लिए आड़ी 3 पंक्तियां बीत गई, पहले के लास्ट में 6 आया, दूसरे के लास्ट में 6 आया, फिर तीसरे के लास्ट में 7 रखा, ऐसे 3 पंक्तियां और लिखो तो 7 दो बार आ गया, फिर ऐसे 3 पंक्तियां लिखकर फिर 7 के बदले 8 लिखना है आपको। फिर अधस्तन समस्त अध्वान जाकर असंख्यात गुण वृद्धि का द्वितीय स्थान होता है। इस प्रकार कांडक प्रमाण असंख्यात गुण वृद्धियों के बीतने पर फिर असंख्यात गुण वृद्धि विषयक एक अन्य अध्वान जाकर एक बार अनंत गुण वृद्धि होती है, यह एक षट स्थान है। समझ में ना, एक षट स्थान में इतने इतने कांडक होते हैं सारे, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसे असंख्यात लोक मात्र षट स्थान होते हैं। कहां पर? एक जघन्य स्थिति बांधने वाले जो जघन्य जो उत्कृष्ट विशुद्धि का परिणाम, उसके साथ इतने अलग अलग अनुभाग स्थान होते हैं कि जिसमें असंख्यात लोक बार तो षट स्थान होते हैं, इन्हें अनुभाग की कितनी विविधता पाई जाती, अलग अलग स्थान बताए ना, अलग अलग नाना जीवन की अपेक्षा ये पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। अब विशुद्धि समान भले ले लो आप, परंतु इसमें वो नहीं ले सकते, अनुभाग की तो डिफरेंस बराबर, परिणामों की समानता होती है। अब परिणामों की समानता देखो, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, परिणामों में विशुद्धि यानी केवल संकलित विशुद्धि ले सकते हैं, और स्थिति बंध अध्यवस्थान में उसके भी कितने वेरिएशन बताए, हमारा लास्ट पुस्तक में उन्होंने चर्चा की थी, अभी 12वें चले ना 11वें पुस्तक में शायद हमने देखी थी, उसके बाद काल के स्थिति के प्रकरण में देखा था, स्थिति के योग्य बंध के योग्य परिणाम भी, एक विशिष्ट स्थिति बन रही है परंतु उसके लिए परिणाम कितने अलग अलग है, यानी उसमें भी उन्होंने विशुद्धि के परिणाम और स्थिति बंध के योग्य परिणाम इनमें भी डिफरेंस किया था।
हम लोग सामान्य कथन करते कि अनिवृत्तिकरण में समान परिणाम होते हैं।
वो तो विशुद्धि कितनी बड़ी, विशुद्धि के अविभाग प्रतिच्छेद अलग है, स्थिति बंध अध्यवस्थान के अलग है, अनुभाग बंध स्थान अलग है।
नहीं तो वो हम लोग खाली 9वें गुण स्थान में ले सकते हैं कि
नहीं, सर्वत्र जहाँ अनिवृत्तिकरण परिणाम होते हैं, वो कौन सा अनिवृत्ति, पहले से 4वें में जाने वाला, पहले से 5वें में जाने वाला, पहले से 4थे में जाने वाला, वो अनिवृत्ति वहाँ के लिए, उपशमक की अनिवृत्ति उपशमक के लिए, क्षपक की अनिवृत्ति क्षपक के लिए।
नहीं, पर यहाँ पे तो पहले से 7वें में जाने
वाले, 7वें में जाने वाले सब समान है, परंतु उसमें ये वेरिएशन उसमें भी होता है, ये कहना चाहते हैं
परिणामों की समानता होने पर।
अरे पर एक परिणाम में इतने अनुभाग की अपेक्षा बंद पड़ते हैं ना, देखो वहां पर भी विशुद्धि का एक परिणाम लिया, उसमें स्थिति बंध के योग्य जो स्थान देखे थे वो असंख्यात लोक प्रमाण देखे थे, और उसमें कारणभूत परिणाम उन्होंने पूर्व कुछ कर्म का उदय को भी लिया था, आपको याद होगा स्पष्ट रूप से उसमें लिखा था कि हम क्या देखते कि कर्म के उदय को भी लिया था, इसलिए वो साता बंधक असाता बंधक की भी बात की थी, याद आए ना, स्थिति बंध अध्यवसान स्थानों की पूरी चूली का उसके लिए उन्होंने ली थी, क्योंकि सामान्य से संकलित विशुद्धि स्थानों की चर्चा अलग की थी और स्थितिबंध अध्यवसान स्थानों की चर्चा अलग की थी, उस एक एक स्थितिबंध अध्यवसान स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान अलग अलग हो गए, क्योंकि अनुभाग स्थान कहो किसके कारण होते हैं, तो जीव के परिणाम, और अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान को वो बात एक ही है, स्थिति स्थानों में ऐसा नहीं था, स्थिति बंध पर्टिकुलर समय का है और उसके कारणभूत परिणाम वो जुदे लिए थे, यहाँ तो जो अनुभाग स्थान है उसी को अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान भी कहेंगे, अभी सामान्य से हम इतना तो लेते हैं यहाँ पर, अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, ये षट स्थान की चर्चा थोड़ी आगे चलेगी। देखो यानी ऐसे कौन से जीव लिए, संयम के अभिमुख वाला लिया, सर्व विशुद्ध लिया, मिथ्या दृष्टि लिया और एक ही विशिष्ट जघन्य स्थिति बांधने वाला लिया। वो जघन्य स्थिति बांधने वाले के जो स्थिति बंध अध्यवसान स्थान है वो असंख्यात लोक, जिसको यहाँ उन्होंने विशुद्धि नाम दिया है, और उस विशुद्धि के जो इतने वेरियंस है उसमें से उत्कृष्ट विशुद्धि वाला जीव लिया। अब उस एक विशुद्धि वाला असंख्यात लोक में से एक परिणाम लिया, उस एक परिणाम के साथ ऐसा कुछ वहाँ अन्य भी कारण बनता है कि अनुभाग जो अलग अलग बनते हैं तो वो असंख्यात लोक प्रमाण बनते हैं, और उसमें भी असंख्यात लोक बार तो षट स्थान पाए जाते हैं। यहाँ तक बात हो गई। पुनः उनमें ज्ञानावरणीय का सर्व जगन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। उनमें ने जो असंख्यात लोक प्रमाण वो जो है ना उत्कृष्ट अंतिम विशुद्धि के द्वारा जो है बंद, वही संयम के अभिमुख वाला जिसमें असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंद यानी उसके अनुभाग स्थान पाए जाते हैं, तो उनमें ज्ञानावरणीय का सर्व जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है।
ये जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा ही चाहिए कि अनंत गुणा है?
एक मिनट, वो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं?
ये तो अंतिम
स्थान है। ना ना ना, असंख्य वहाँ असंख्यात लोग मात्र षट्स्थान होते हैं, उनमें ज्ञानावरणीय का सर्व जघन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है।
अनंत गुणा हीन के
ना, ना ना ना, अनंत गुणा है। वो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? ऊपर के जो समय दृष्टियों की बात देख रहे थे उसके उसकी अपेक्षा लेना इसको,
स्वस्थान की अपेक्षा समय दृष्टि की
स्वस्थ, हमने उसको कुछ नहीं नाम देंगे। अभी हम ये मिथ्या दृष्टि में आ गए कि नहीं, उसके पहले जिन स्थानों की चर्चा की थी
तो वहाँ तो अपूर्वकरण के
हाँ उसके लिए है, वही से हमने लिए थे।
अपूर्वकरण का जो पहला समय का स्थान है चढ़ने वाले का, उससे ये स्थान अनंत गुणा है ज्ञानावरण का।
देखो देखो, संयम के अभिमुख हुए लिए है तो उसमें असंख्यात उसके असंख्यात
स्थानों की चर्चा की,
वो तो पहले हमने
श्रेणी वाले स्थान की सपट श्रेणी, तो सपट श्रेणी में जो
उससे अनंत गुणा है
उससे ये अनंत गुणा है,
और उसमें ये जो असंख्यात लोक प्रमाण जो है देखो उसमें से सर्व जगन्य अनुभाग स्थान लिया, फिर इन्हीं असंख्यात लोक मात्र षट स्थानों में जो संयम के अभिमुख वाले थे ज्ञानावरणी का उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। षटस्थानों में अंतिम जो है वो तो ठीक ही है, अरे एक षटस्थान का भी अंतिम स्थान भी अनंत गुणा हो जाता है, क्योंकि एक बार भी होगा तो अनंत गुणा होगा। ऐसे अनंत गुणा कितने बार हुआ? असंख्यात लोक बार हुआ है। फिर अंतिम समयवर्ती उसी मिथ्या दृष्टि का जघन्य विशुद्धि के द्वारा बांधा जाने वाला जघन्य अनुभाग स्थान अनंत गुणा है। क्या कहते हैं अब इसको जरा
ये समझ में नहीं आया, ये तीसरे लाइन में बताया,
ये हमने जघन्य स्थिति बंध लिया
हाँ।
ये विशुद्धि के अलग अलग स्थान देखे उत्कृष्ट से जघन्य तक, पहले उत्कृष्ट विशुद्धि के द्वारा अनुभाग बंधे
हाँ,
ये कैसे अनुभाग बंधे? ये जघन्य अनुभाग और ये उत्कृष्ट
अनुभाग।
अब ये जघन्य से उत्कृष्ट अनंत गुणा है, ये तो नक्की है, समझ में ये बात। अब कहते हैं अब ये जो उत्कृष्ट विशुद्धि के द्वारा उत्कृष्ट अनुभाग बंधा उसकी कंपैरिजन ये जो असंख्यात लोक प्रमाण उतना ही स्थिति बांधने वाले के जो परिणाम थे उसमें से जो जघन्य विशुद्धि का परिणाम है उसके अपने जो असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशन होगी उसमें से जो जघन्य है उसका जघन्य हम नीचे नीचे लिखते, उसका जो जघन्य है ये जघन्य और ये उत्कृष्ट अनुभाग में उल्टा लेना है, स्थिति में उल्टा लेना, स्थिति ज्यादा विशुद्धि में कम बंधेगी, अनुभाग ज्यादा विशुद्धि में कम बंधेगा, क्योंकि उल्टा होगा उसमें अशुभ। हाँ हाँ, यानी पहले क्या लिया, उत्कृष्ट विशुद्धि, जघन्य अनुभाग बंद, उससे उत्कृष्ट विशुद्धि से उत्कृष्ट अनुभाग बंद, वो जघन्य से उत्कृष्ट अनंत गुणा है। अब इसकी कंपैरिजन विशुद्धि में जघन्य विशुद्धि ली, वो जघन्य विशुद्धि के द्वारा बांधा गया जघन्य अनुभाग उत्कृष्ट विशुद्धि द्वारा बांधने वाले उत्कृष्ट अनुभाग से ये जघन्य अनंत गुणा है, बस इतना। और उससे उसका उत्कृष्ट तो अनंत गुणा है ही है। थोड़ा फिर से पढ़ते हैं इसको, देखो। उनमें ज्ञानावरणी का सर्वजघन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। फिर इन्हीं असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों में कौन से, वो उतने ही स्थिति बांधने वाले, जो ज्ञानावरणी का उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। फिर अंतिम समयवर्ती उसी मिथ्या दृष्टि का जघन्य विशुद्धि के द्वारा बांधे जाने वाला, स्थिति उतनी बांधी उसमें हमने जघन्य से उत्कृष्ट तक बहुत विशुद्धि के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम देखे थे, उसमें से जघन्य विशुद्धि के द्वारा बांधा जाने वाला जघन्य अनुभाग स्थान अनंत गुणा है। फिर इन्हीं असंख्यात लोक मात्र षट स्थानों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। ये ऐसा ही लेना, जघन्य स्थिति बांधने वाला परिणाम, वो परिणाम में से विशुद्धि के जघन्य से उत्कृष्ट तक असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशन है। ये जघन्य स्थिति बनने वो संयम के अभिमुख वाला भैया एक जीव लिया या अनेक जीव लिए, उत्कृष्ट विशुद्धि से जघन्य अनुभाग बंद, उत्कृष्ट विशुद्धि से उत्कृष्ट अनुभाग बंद, जघन्य से उत्कृष्ट अनंत गुणा, उससे अभी सारे असंख्यात लोक प्रमाण छोड़ दो, जघन्य विशुद्धि जो है, जघन्य विशुद्धि के द्वारा बांधे जाने वाला जघन्य अनुभाग बंद, ये उत्कृष्ट विशुद्धि से बांधने वाले उत्कृष्ट अनुभाग से भी अनंत गुणा ज्यादा है, और उससे उसका अपना उत्कृष्ट वो तो है ही है, वो तो समझ में आ गई ऐसी बात है। फिर इन्हीं असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। फिर द्विचरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के, वो अंतिम समय वाला वो संयम के अभिमुख वाला लिया था, उसमें ये कंपैरिजन की। अब उसके एक समय पूर्व की बात करते हैं। द्विचरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट विशुद्ध स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। अब सब में ऐसी कंपैरिजन करना
है।
ये अंतिम समय वाला है, फिर द्विचरम के, द्विचरम के विशुद्धि स्थान उत्कृष्ट से जघन्य तक, उत्कृष्ट के द्वारा जघन्य अनुभाग उत्कृष्ट अनुभाग, जघन्य विशुद्धि के द्वारा जघन्य अनुभाग उत्कृष्ट अनुभाग, ये द्विचरम की कंपैरिजन चल रही है। फिर इसी विशुद्ध नहीं ठीक है, क्योंकि डालेंगे तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। फिर इसी विशुद्धि के असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों में ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। ये समझ में है ना बात, एक बार जो हमने विशुद्धि के स्थान लिखे और एक बार जो अनुभाग के स्थान। फिर उसी द्विचरम समय में जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। फिर इसके ही असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों में ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। ये समझ में आवे। इस प्रकार त्रिचरमादि समयों में, क्योंकि वो सारे अनिवृत्तिकरण के परिणाम है ना वहां पर जाने वाले, अनंत गुणित क्रम से, वहां सब अनंत गुणित क्रम है, अंतर्मूर्त तक उतारना चाहिए, उसका वो अंतर्मूर्त काल है अनंत गुणित। पुनः उससे आगे मिथ्या दृष्टि के स्वस्थान उत्कृष्ट विशुद्धि परिणाम संबंधी जघन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। ये स्वस्थान ने वो करण परिणामों में लिए थे, करण परिणामों को छोड़कर स्वस्थान परिणाम लेते हैं, स्वस्थान अति विशुद्ध लेना है, ये प्रायोगिक लब्धि का ले सकते हैं मेरे ख्याल से। फिर उसके ही असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। यानी प्रायोगिक लब्धि का सर्व विशुद्ध परिणाम लेंगे उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान हो गए, फिर उसके ही स्वस्थान जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी जघन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। फिर इसके ही, क्योंकि वो उसमें अलग अलग विशुद्धि हो सकती है अलग अलग जीवों को, इसके ही असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। तो ये हमने संगी पंचेंद्रिय के योग्य वो संयम के अभिमुख वाले से लेकर उल्टे क्रम से स्वस्थान मिथ्या दृष्टि को संगी पंचेंद्रियों में घटित किया। अब बाकी चर्चा हम कल करेंगे, फिर असंगी पंचेंद्रियों के सर्व विशुद्ध और सर्व जघन्य विशुद्धि ऐसी उसकी चर्चा करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगी बात। हाँ, ज्यादा को वक्त लिया ये सारे। हाँ, ये समझ में नहीं, तो फिगर के बिना वो ख्याल में नहीं आता क्या कहना चाहते, केवल पढ़ने से नहीं ख्याल आता। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तकनम सदा देत हो मयं भाई।